नमस्कार आदाब दोस्तों, क्वेश्चन मार्क की पाठशाला में आने वाले सभी छात्रों और उनके परिजनों का स्वागत है। आज दिन है अर्थ के नाम यानी अर्थशास्त्र के नाम। तो जो छात्र अर्थशास्त्र की पढ़ाई करना चाहते हैं, वो सारे काम छोड़कर अपने फेवरेट शिक्षक को सुने और मन में जो भी सवाल आए वो रिकॉर्ड भी करे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास।
मोबाइल वाणी के क्वेश्चन मार्क एजुकेशन प्रोग्राम में मैं विजय कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक, वीमेंस कॉलेज समस्तीपुर, आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग व्यवसायिक बैंक, व्यापारिक बैंक के एक महत्वपूर्ण कार्य के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है शाख निर्माण। हाँ, आजकल सभी व्यवसायिक बैंकों का प्रमुख कार्य शाख निर्माण हो गया है, क्योंकि बैंक जनता से प्राथमिक जमाएं, प्राइमरी डिपॉजिट्स प्राप्त करते हैं और साख गुणक क्रेडिट मल्टीप्लायर के आधार पर प्राप्त जमाओं से कई गुना अधिक ऋण देते हैं। सभी ऋण मांग जमाओं के रूप में होते हैं, इसलिए आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने बताया, वर्तमान समय में व्यापारिक बैंक मुद्रा का केवल लेन देन ही नहीं करते बल्कि साख का निर्माण भी करते हैं। प्रोफेसर हाम के अनुसार बैंकों की जमाएं दो प्रकार की होती है, पहला प्राथमिक जमाएं, प्राइमरी डिपॉजिट्स, एवं दूसरा व्युत्पन्न अथवा गौण जमाएं, डिराइव्ड डिपॉजिट्स। प्राथमिक जमाएं वे जमाएं हैं जो जमाकर्ताओं द्वारा बैंकों में वास्तविक मुद्रा के रूप में नकदी में जमा की जाती है। दूसरे शब्दों में, जब कोई खाता धारक बैंक की नकदी देकर अपने खाते में धनराशि जमा करता है, तब बैंक को मिलने वाली ये नकदी बैंक की नकद जमाएं होती है। उदाहरण के लिए, यदि बैंक का ग्राहक दिनेश अपने बैंक भारतीय स्टेट बैंक में अपने बचत या किसी अन्य खाते में 10,000 रुपया जमा करता है, तब यह 10,000 रुपया भारतीय स्टेट बैंक के लिए उसकी नकद अथवा प्राथमिक जमाएं हैं। वहीं इसके विपरीत, जब बैंक किसी व्यक्ति को ऋण देता है, तब वह बैंक अपने ही बैंक में उसके खाते में उस ऋण राशि को डाल देता है, तब उस खाते में बैंक द्वारा लिखी गई धनराशि व्युत्पन्न जमा कहलाती है। व्युत्पन्न जमा प्राथमिक जमा का परिणाम होती है, क्योंकि बैंक अपने नकद कोष के आधार पर ही साख प्रदान करता है, इसीलिए इन व्युत्पन्न जमाओं को साख जमा भी कहते हैं। बैंक जितना अधिक ऋण देता है, उतनी ही अधिक साख जमाएं उत्पन्न होती है। इस प्रकार ऋण जमाओं को उत्पन्न करते हैं और जमाएं ऋणों को जन्म देती है। बैंक द्वारा साख निर्माण की प्रक्रिया को एक उदाहरण द्वारा अधिक समझा जा सकता है। मान लीजिए, यदि कोई ग्राहक अपने बैंक ए में 10,000 रुपया जमा करता है, इस प्रकार 10,000 रुपया बैंक ए की प्राथमिक जमा राशि है। दूसरा, बैंक अपने अनुभव से यह जानता है कि ग्राहक किसी समय पर अपनी जमाओं के एक अंश या प्रतिशत की ही मांग करते हैं, अतः बैंक अपने ग्राहक के खाते में 10,000 रुपया नकदी नहीं बनाए रखता। यहाँ पर इस उदाहरण में इस मान्यता पर कि नगद कोष अनुपात 3% है, बैंक अपने पास 3% नगद कोष के रूप में रखेगा, शेष 9,700 रुपया उधार दे देगा। अब यह रुपया दिनेश को नगद के रूप में न देकर उसके खाते में जमा कर देता है। इस प्रकार बैंक ए में 9,700 रुपया की व्युत्पन्न जमा उत्पन्न हो जाती है। अब दिनेश यदि किसी भुगतान के लिए चेक द्वारा यह रुपया सुरेश को दे देता है, सुरेश इसे अपने बैंक बी में जमा करा देता है, अतः बैंक बी में 9,700 रुपया प्राथमिक जमा में से 290 रुपया, 9,700 का 3% अपने पास नगद रूप में रखकर शेष 9,409 रुपया किसी अन्य व्यक्ति श्याम को उधार दे देगा, अर्थात श्याम के नाम उसके खाते में जमा कर देगा। अब 9,409 भी श्याम को भुगतान के पश्चात किसी और बैंक माना सी में जमा होकर उसकी प्रारंभिक जमा बनेगी। बैंक सी भी अपने पास 282 रुपया रखकर शेष 9,127 रुपया उधार दे देगा। यह प्रक्रिया विभिन्न बैंकों में उस समय तक चलती रहेगी जब तक कि संपूर्ण पहली नगद प्राथमिक जमा राशि 10,000 रुपया में 33 गुनी वृद्धि नहीं हो जाती, क्योंकि यहाँ पर नगद कोष अनुपात 3% रखा गया है। जैसा कि प्रारंभ में बताया, बैंक जनता से प्राथमिक जमाएं प्राप्त करता है और साख गुणक के आधार पर प्राप्त जमाओं से कई गुना अधिक ऋण दे देते हैं। साख गुणक बैंकों की जमाओं पर नगद कोष अनुपात का व्युत्क्रम होता है, रेसिप्रोकल होता है। साख गुणक यह बताता है कि व्यापारिक बैंक कितनी मात्रा में साख सृजन कर सकते हैं। इस प्रकार शाख गुणक का सूत्र है शाख गुणक बराबर 1/ जमाओं पर नगद कोष अनुपात। इन सब के अलावा भी शाख निर्माण कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे देश में मुद्रा की मात्रा। देश में नगद मुद्रा की मात्रा जितनी अधिक होगी, बैंकों के पास नगद जमाएं उतनी ही अधिक होगी और बैंक उतनी ही अधिक मात्रा में शाख निर्माण कर सकेंगे। दूसरा, मुद्रा की तरलता पसंदगी। यदि व्यक्ति अपने पास नगदी अधिक रखते हैं तब बैंक में जमाएं घटती है और शाख निर्माण का आकार घट जाता है। तीसरा, बैंकिंग आदतें, बैंकिंग हैबिट्स। जनता में बैंकिंग आदत जितनी अधिक होती है, बैंकों की शाख निर्माण शक्ति उतनी ही अधिक होती है। बैंक शाख निर्माण अधिक मात्रा में तभी कर सकते हैं जब अधिक बैंकिंग आदत के कारण बैंकों से अधिक ऋण की मांग की जाती है, विपरीत दशा में शाख का निर्माण कम हो जाएगा। चौथी बात, जमाओं पर नगद कोष अनुपात। प्रत्येक बैंक को अपनी जमा का एक निश्चित भाग नगद कोष के रूप में रखना पड़ता है, अतः बैंक शाख का निर्माण कम करेंगे या अधिक यह नगद कोष अनुपात पर निर्भर करता है। इसके अलावा ब्याज दर, यदि ब्याज की दर ऊंची हो तो शाख की मात्रा कम हो जाती है। इसके विपरीत नीची ब्याज दर प्रायः शाख की मांग को प्रोत्साहित करते हैं। इसके अलावा बैंकों का केंद्रीय बैंक के पास जमा राशि और केंद्रीय बैंक की शाख संबंधी नीति पर भी निर्भर करती है। आज के वर्ग में इतना ही, थैंक यू।
तो दोस्तों, ऐसे ही हर रोज क्वेश्चन मार्क कार्यक्रम में आप अलग अलग विषयों के शिक्षकों को सुन सकेंगे और नई नई जानकारियाँ ले सकेंगे। इतना ही नहीं, हर माह के अंत में शिक्षक आपसे पूछेंगे कुछ सवाल जिसका सही जवाब देकर आप बन सकते हैं मोबाइल वाणी के स्टार स्टूडेंट। और अगर आपके मन में भी विषय से जुड़ा कोई सवाल हो तो बिना देर किए मोबाइल में दबाए नंबर 3 और रिकॉर्ड करें अपनी बात। और हाँ साथियों, इस कार्यक्रम को लाइक करें, सोशल मीडिया पर शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। नमस्कार।